सुमर मनुआ सुमर मनुआ सुमर मनुआ सुमर मनुआ सुमर मनुआ सुमर रे पंच तत्व सुविचार सुमर मनुआ सुमर रे पंच तत्व सुविचार घट घट भीतर जग में निरंतर नाद ब्रह्म साकार सुन लो प्रणव की दिव्य पुकार सुमर मनुआ सुमर रे पंच तत्व सुविचार मेरा मेरा कुछ नहीं तेरा छोड़ दो अहंकार पालो शाश्वत सौख्य अपार सुमर मनुआ सुमर रे पंच तत्व सुविचार कारण और फल कर्म भाग्य का स्मर लो बारंबार सुन लो धर्म चक्र झंकार सुमर मनुआ सुमर रे पंच तत्व सुविचार सुमर मनुआ सुमर रे पंच तत्व सुविचार चंद्रकोर का चल सहारा करे सितारा एक आधार मानो श्रद्धा का ये सार सुमर मनुआ सुमर रे पंच तत्व सुविचार जला दो यज्ञ अग्नि में ये कटु विषय विकार कर लो दैवी साक्षात्कार सुमर मनुआ सुमर रे पंच तत्व सुविचार सुमर मनुआ सुमर रे पंच तत्व सुविचार ये स्तूप ऐक्य का प्रेम धर्म का सत्य शांति का द्वार संदेश भव्य दे मंत्र दिव्य दे साईनाथ अवतार जय जय साईनाथ अवतार जय जय साईनाथ अवतार जय जय साईनाथ अवतार
Thank you. खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में
खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में
तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं चले आते हैं दौड़े जो खुश किस्मत है थोड़े ये हर राही की मंजिल ये हर कश्ती का साहिल जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला
जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला
तू बिछड़ों को मिलाए बुझे दीपक रातें ये खाली इनको बना दे इधर दिवाली लपे दुआए आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें कर झोली खाली
Thank you. जब तुझे पुकारा साईं तूने दिया सहारा, जब जब तुझे पुकारा साईं तूने दिया सहारा। बीच भंवर में आर पसी हूँ टूट गया है किनारा, जब जब तुझे पुकारा तेरे चरण में शरण मिली
तुम्हारा व्रत में स्वीकार करूं मां मजदा। है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। कहते हैं सारे मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे तूने बनाए चांद सितारे। तू दुख दूर करे तो मेरे, मेरी बिगड़ी बनाए तो तेरे, गुनगाऊं सुबह शाम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम।
जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी, थल में भी, चल में, अचल में भी, अतल वितल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
जहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई,
ये अपनी माई, ये अपनी माई।
राई को पर्वत कर सकती पर्वत को राई,
पर्वत को राई, पर्वत को राई।
द्वार खुला दरबार खुला है बहन भाई, किसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई,
दया की कमी नहीं आई।
पल में निहाल करे दुख का निकाल करे, पल
में निहाल करे दुख का निकाल करे तुरंत कमाल करे माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ
वह जहाँ मत पूछ कहाँ कहाँ है संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ अपनी संतोषी माँ
There are two things, however, two features of our social life which I think we could be pardonably proud of. The first is our faith, unswerving faith in the unity of life and reverence for life. We believe in kinship and not in alienation. Alienation is foreign to our way of thinking. As a matter of fact, you cannot translate the word Satan into any indigenous language. We have always believed that God is the creator of all things. Then who else could have created the Satan, the devil? So God cannot disown the devil also. In our way of thinking, the devil also is God's child. And this is what sustains our faith in the unity of all life. So, I must sound a note of friendly warning. Let not these vegetarians, as we are all, I have been a vegetarian by usage, by birth, by tradition, and of late I have been a vegetarian by choice also. But let us not arrogate to ourselves all compassion. Communities that have been, I would say, practicing, not indulging, in flesh eating, have produced men to whom I think no vegetarian can hold the candle so far as compassion is concerned. So if we adopt an attitude of lofty contempt for those who are flesh eaters, I would simply say non-vegetarians. As a matter of fact, they are not non-vegetarians. They eat a mixed diet of flesh and vegetables. So if we adopt an attitude of contempt towards them, we shall be guilty not only of a shameless effrontery, but also bigotry of the worst kind. What vegetarianism stands for is unity of all life and cosmic harmony. These are the two points on which we take our stand. And I think if we seriously think of this, vegetarianism is not a doctrine, not a fad, not a dogma, and not even a philosophy. I think it was Dean Swift who said philosophy is the lumber of schools. It has simply nothing to do with real life, with the life of men as they go about the business of life in everyday affairs. The second feature of which we could be pardonably proud is that in India there are whole communities that are committed to vegetarianism, and perhaps the number of vegetarians in India is equal to the number of whole populations of so many countries. But as I said, this is a country of contrasts. On the one hand, we have very highfalutin philosophic terms, and on the other, our way of life is so sordid that we have long spurned man and condemned him to untouchability. This is a country where you have serene heights of philosophy and vegetarian way of life, and where you have people who eat carrion and carcasses also on religious grounds. It was Edgar Snow who said, in India, the Hindu sins also religiously. This is true of man everywhere in the world. Man has been sinning religiously in every part of the world. And we have, even today, in some parts of this country, people who believe in human sacrifice to appease their deities, their gods. So I think, and I especially beseech you, to erect this edifice of vegetarian thought on the basis of unity and reverence for all life, sanctity of all life, and on the basis of our faith in men who are vegetarians and men who are not vegetarians. We have gathered together under the shadow of a great calamity which has recently visited this country and made several parts of the country desolate. This shadow has lengthened over the fair face of our country. And I think vegetarianism should teach us also to claim all men as our kith and kin. This, I believe, is the crux, is the basis on which a vegetarian way of life rests. I don't know how many minutes more I have. Yes. मुझसे कहा गया है कि कुछ शब्द मैं हिंदी में भी कहूं. असल में मैं अंग्रेजी में बहुत कम बोलता हूं, और अंग्रेजी जो बोलता हूं वो भी जैसी तैसी होती है. हिंदी में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये शाकाहार नाम की जो चीज है वो क्या है. शास्त्रों को और ग्रंथों को छोड़ दीजिए, विचार को ही लीजिए. मैं नहीं जानता मनुष्य प्रकृति से कैसा है, लेकिन मनुष्य में और दूसरे प्राणियों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मनुष्य प्रकृति के अधीन नहीं है. मनुष्य या तो सुसंस्कृत हो सकता है या विकृत हो सकता है. प्रकृति के अधीन दो ही जीव हैं, एक तो पशु है और दूसरा देवता है. ये भोग योनिया कहलाती. मनुष्य कर्म योग योनि है, अपने जीवन को बदल सकता है. पशु या देवता अपने जीवन को बदल नहीं सकते। इसलिए मनुष्य की क्या विशेषता है, बगैर भूख के खा सकता है, बगैर प्यास के पी सकता है, ये कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। सारे के सारे प्राणी प्रकृति के अनुगामी हैं। इसलिए मनुष्य को चॉइस है, मनुष्य में विवेक है, अपनी इच्छा को वो शुद्ध कर सकता है, सुसंस्कृत कर सकता है। काका साहब एक दफा बहुत ज्यादा बीमार हुए, एक होम्योपैथ उनको दवा दे रहे थे। जब काका साहब के जीने की कोई आशा नहीं रही तो हम लोगों ने कहा कि आप इनको थोड़ा सा ग्लूकोज दीजिए। तो उन्होंने कहा ग्लूकोज तो अन्न है और इनको तो डायरिया हो गया है, अब अन्न मैं नहीं दे सकता, तो फिर क्या दिया जाए, व्हाइट ऑफ द एग, अंडे में जो सफेद हिस्सा होता है वो इनको खिलाया जाए। काका साहब से पूछा, निकाह जी इन्होंने तो कह दिया है कि अब मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, अब सिर्फ जीने के लिए मैं अंडा नहीं खाऊंगा। काका साहब ने अंडा नहीं खाया और आज वो 92 वर्ष के हैं। इसे मैं फेथ कहता हूं, ये बिगटरी नहीं है, जिद नहीं है, यह हठ नहीं है। दूसरे एक महान नेता भी हमारे देश में हुए, उन्होंने कहा कि मैंने चारपाई को छोड़कर कोई चौपाया ऐसा नहीं छूटा है जिसका मांस न खाया। ये दो ध्रुव हैं हमारे देश में, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ, एक तरफ काका साहब और दूसरी तरफ वो दूसरे सज्जन। मैं जो निवेदन कर रहा था वो आपसे यह कर रहा था कि हम लोगों की शाकाहारियों का एक संप्रदाय, एक जाति अगर बन जाएगी तो ये एक बंद समाज बनेगा, इसकी चार दीवारी के भीतर कोई आ नहीं सकेगा। और ये जो पश्चिम से आज हमारे मित्र यहाँ आए हुए हैं, ये किसी शाकाहारी समाज में पैदा नहीं हुए, ये जन्म से शाकाहारी नहीं है। तो शाकाहारी बना जा सकता है, ईसा शाकाहारी नहीं था, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी शुरू में शाकाहारी नहीं था, लेकिन मैंने पूछा अभी अंग्रेजी में कि क्या कोई शाकाहारी ऐसा आपको मालूम है जो दया में और अनुकंपा में, करुणा में इनकी बराबरी कर सकता हो। जो शाकाहारी समाज नहीं है उनमें भी महान दयालु लोग पैदा हुए हैं, लेकिन हम जो शाकाहारी हैं उन्होंने एक तरह की हिंसा से तो परहेज किया, लेकिन मित्रों दूसरी तरफ से की हिंसा से परहेज नहीं किया। हिंसा दो तरह की होती है, एक हिंसा होती है वुल्फ की, भेड़िए की, और दूसरी हिंसा होती है जोंक की। भेड़िया खा जाता है इसलिए उसकी हिंसा दिखाई देती है, जोंक खून चूसती है उसकी हिंसा दिखाई नहीं देती। तो शाकाहार हमको यह सिखाए कि हम जोंक की हिंसा से भी बाज आए। शाकाहारी समाज हमारे देश में कितने हैं, लेकिन वो कभी जोंक की हिंसा से बाज नहीं आए। मनुष्यों का शोषण और मनुष्यों का संकट, मनुष्यों की दुर्दशा कि उनके हृदय को छू नहीं गई। जैसी पशुओं के लिए करुणा है, इस तरह की करुणा मनुष्य के लिए नहीं रही। मित्रों, मनुष्य हमारी सारी जितनी सांस्कृतिक योजनाएं हैं उन सब का मानदंड होना चाहिए, और इसलिए मानवीय बंधुत्व, मानवीय करुणा के आधार पर विश्व बंधुत्व आना चाहिए। मैंने इसलिए दो चीजें आप लोगों की सेवा में निवेदन की हैं। एक तो जीवन सबसे महान मूल्य है, मृत्यु लोक में जीवन ही महान मूल्य है। इस जीवन का विकास और इस जीवन का संरक्षण ही हम सबका मिलाजुला काम होना चाहिए। और दूसरी चीज ये रखी कि हमारे देश में शैतान की कल्पना ही नहीं, दानव और मानव, मनुज और दनुज, ये दोनों या तो मौसेरे भाई रहे हैं या सौतेले भाई रहे हैं, वो हमारे सब रिश्तेदार रहे हैं। कोई दुनिया में ऐसा दुर्जन है ही नहीं जो असाध्य हो। दुर्जन हमारे भीतर भी है, सज्जन उनके भीतर भी हैं। यह भावना जब तक हमारे भीतर नहीं आएगी जो शाकाहारी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सज्जन कसाई और दूसरे कसाई भी हृदय में करुणा रख सकेंगे, लेकिन शाकाहारी मनुष्य नहीं रख सकेगा। एक छोटी सी कहानी कहकर मैं इसको समाप्त करूंगा। बर्ट्रैंड रसेल महान दार्शनिक हो गया, अपनी एक किताब में एक छोटी सी कहानी लिखी है। अगल बगल में दो द्वीप थे, उनमें दो तरह के लोग रहते थे, एक शाकाहारी और दूसरे मांसाहारी। दोनों में हमेशा की अदावत, शाश्वत शत्रुता, क्योंकि ये शाकाहारी थे तो इनको ये बर्दाश्त नहीं था, ये सह नहीं सकते थे कि हमारा पड़ोसी मांसाहारी हो। इसलिए पुण्य प्रकोप की एक झटके में उन्होंने चढ़ाई कर दी शाकाहारियों पर और सारे शाकाहारियों को समाप्त कर दिया। सारे शाकाहारी मांसाहारी द्वीप पर मुर्दों का ढेर पड़ा हुआ था। अब इन मुर्दों के साथ क्या किया जाए, तो उन्होंने बहुत धार्मिकता से संकल्प किया कि यो तो ये मर ही गए हैं, अब इनको खा ही क्यों न लिया जाए। जिस दिन कोई भी सांस्कृतिक मूल्य एक सिद्धांत बन जाता है, उस दिन उस सिद्धांत के नाम पर मनुष्य मनुष्य का कत्ल करता है। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता था कि ये कोई नया एक धर्म न बने, एक नया संप्रदाय न बने, नई जाति न बने, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अंत में जिन लोगों ने ये मान लिया है कि मांस खाना फैशन है, अद्यतन आधुनिकतम फैशन है, मॉडर्निज्म है, मॉडर्निटी है, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस दिशा में उनके कदम आज बढ़ रहे हैं उस दिशा में या तो कैनिबालिज्म आएगा, मनुष्य मनुष्य का भक्षण करेगा, या मनुष्य एक ओमनिवोरस प्राणी बन जाएगा। ओमनिवोरस से मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जो नहीं खा सकता है। ये कुछ विचार हैं, जिन विचारों को जो बुनियादी चीजें हैं उनको आप लोगों की सेवा में मैं निवेदन करना चाहता था। अगर मैंने कोई अधिक समय ले लिया है तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। सबको नमस्कार है, सबको धन्यवाद।